नमस्कार भारत, 23 मई बुधवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के बीच प्रस्तावित बातचीत पर मंडराए संकट के बादल।
There's a chance, it's a very substantial chance that it won't work out. I don't want to waste a lot of time, and I'm sure he doesn't want to waste a lot of time.
JDS कांग्रेस गठबंधन के नेता HD कुमार स्वामी आज लेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, केंद्रीय सेवाओं में RSS की पसंद के अधिकारी तैनात करने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। BJP का पलटवार।
राहुल गांधी जी को बधाई भी देना चाहिए, विश्व के सबसे कंफ्यूज्ड व्यक्तियों में से शायद वो एक है। मुझे RSS शब्द कहीं दिखा नहीं, RSS से कोई लेना देना नहीं है।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार मोहम्मद शाहिद से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ होने वाली मुलाकात को लेकर संदेह पैदा कर दिया है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा है कि उत्तर कोरिया अगर कुछ शर्तों को पूरा करने से इनकार करता है तो शिखर सम्मेलन में देरी हो सकती है। वहीं उत्तर कोरिया पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर एक तरफा तरीके से परमाणु हथियार नष्ट करने के लिए अमरीका दबाव डालेगा तो वो बीच में बैठक छोड़कर चला जाएगा। JDS नेता HD कुमार स्वामी आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं गठबंधन सरकार के सबसे बड़े दल कांग्रेस के दलित नेता और प्रदेश प्रमुख जी परमेश्वरा उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस नेता KR रमेश स्पीकर पद की शपथ लेंगे। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने वेबसाइट की तकनीक को नुकसान पहुंचाने के इस्तेमाल से बचाने में असफल रहने पर यूरोपीय यूनियन के सांसदों से माफी मांगी है। हालांकि जवाबों की अस्पष्टता को लेकर उनकी निंदा हुई है। राजनीतिक परामर्श कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका को करोड़ों फेसबुक उपयोगकर्ताओं के निजी डाटा कैसे मिले, सांसदों ने इसका स्पष्टीकरण मांगा था। कुछ सांसदों ने इस सत्र के प्रारूप पर भी गुस्सा जताया। यूरोपीय यूनियन के ब्रिटिश सदस्य क्लोड मॉरिस ने कहा कि जकरबर्ग को अधिक विस्तृत जानकारी देनी चाहिए थी।
I really don't think he took the opportunity to, and I think he should have.
मुझे सच में नहीं लगता कि उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया, और मुझे लगता है कि उन्हें यूरोपीय यूनियन में सवालों के जवाब देने चाहिए थे। अमेरिका में ये एक पुराना तरीका है। कांग्रेस सिर्फ फेसबुक मुद्दे पर चर्चा कर रही थी जिस पर वो कानून नहीं बना रही है। यूरोपीय यूनियन ये कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये एक खो चुका मौका है। ये थे यूरोपीय यूनियन के ब्रिटिश सदस्य क्लॉड मॉरिस के शब्द। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की जांच के मुताबिक म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान चरमपंथियों ने पिछले साल अगस्त में दर्जनों हिंदू नागरिकों की हत्या की थी। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले समूह का कहना है कि आरसा नाम के संगठन ने एक या संभवतः दो नरसंहारों में 99 हिंदू नागरिकों को मार डाला था। हालांकि आरसा ने इस तरह के किसी हमले को अंजाम देने से इनकार किया है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। राष्ट्रपति निकोलस मडुरो के दोबारा चुनाव लड़ने की निंदा करने के बाद वेनेजुएला ने अमेरिका के दो शीर्ष प्रतिनिधियों को अपने देश से निष्कासित कर दिया है। मडुरो ने आरोप लगाया कि चार्ज डी अफेयर्स टॉड रॉबिन्सन समेत इन लोगों ने उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रची थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने राजनयिकों के खिलाफ इन आरोपों को खारिज किया है और वेनेजुएला को कार्रवाई की चेतावनी दी है। सोमवार को समाजवादी सरकार के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। इस पर मडुरो ने कहा था कि ये उनकी देश की गरिमा को अपमानित करेगा। मैंने उन्हें अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और राजनीतिक मामलों के खंड के प्रमुख ब्रायन नारांजो समेत उनके निष्कासन की घोषणा की है। विरोध स्वरूप और वेनेजुएला के लोगों की गरिमा के बचाव में उन्हें 48 घंटों के अंदर देश छोड़ना होगा। साजिशें बहुत हुई, अब बहुत हो चुका। ये थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो के शब्द। महिलाओं के गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध हटाने से एक महीने पहले सऊदी प्रशासन ने 3 महिला अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में अब तक 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वह महिलाएं हैं जो गाड़ी चलाने के अधिकार और सऊदी के पुरुष अभिभावक प्रणाली के खिलाफ अभियान चला रही थी। पहली गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने कहा था कि विदेशी संस्थाओं के साथ संदिग्ध संपर्क के कारण इन महिलाओं को हिरासत में लिया गया था। इस साल का श्रेष्ठ उपन्यास का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अंग्रेजी में अनुदित किए गए फ्लाइट्स उपन्यास के लिए पोलिश लेखिका ओल्गा तोकारचुक को दिया गया है। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ pbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच 12 जून को प्रस्तावित बातचीत पर काले बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया कुछ शर्तों पर मिलने से इनकार करता है तो इस ऐतिहासिक सम्मेलन में देरी हो सकती है। वहीं उत्तर कोरिया पहले ही कह चुका है कि परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए अमेरिका उस पर दबाव न बनाए। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए मोहम्मद शाहिद से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले महीने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ होने वाले ऐतिहासिक सम्मेलन में देरी हो सकती है। इस सम्मेलन के संबंध में बातचीत के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन व्हाइट हाउस आए हुए हैं। उनके स्वागत के दौरान ट्रंप ने ये बात कही। एक मौका है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है जो काम नहीं करेगा। मैं बहुत समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि वो भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है जो शायद 12 जून तक काम करे या ना करे। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच 12 जून को सिंगापुर में सम्मेलन प्रस्तावित है। अप्रैल में किम और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के बीच हुई बैठक के बाद ये सम्मेलन तय हुआ था। हालांकि अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने कहा है कि सम्मेलन को लेकर समान मुद्दे तलाशे जा रहे हैं।
चेयरमैन किम आस्क्ड फॉर दिस मीटिंग, प्रेसिडेंट ट्रंप एग्रीड टू अंडरटेक इट, वी वर्क टू फाइंड अ डेट एंड लोकेशन, वी गॉट दोस सेट।
चेयरमैन किम ने बैठक के लिए कहा था, राष्ट्रपति ट्रंप इसे करने के लिए सहमत हो गए। हम तारीख और स्थान को लेकर काम करने लगे, हमने वो भी तय कर लिया। हम तब से काम कर रहे हैं, ये साफ है कि हम इसको लेकर काम कर रहे हैं कि जो भी चर्चा हो उस पर एक समान समझ बन सके। लेकिन फिर ये देखना होगा कि जो चीज सही चली आ रही है वो आखिर में भी वैसी ही हो जैसा राष्ट्रपति ने कहा, हम इसे देखते हैं। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो के शब्द। दक्षिण कोरियाई समाचार एजेंसी योनहैप की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप से ये कह सकते हैं कि उन्हें किम से क्या उम्मीद रखनी चाहिए और क्या नहीं। उत्तर कोरिया एक अच्छी भावना दिखाते हुए परमाणु परीक्षण स्थल को नष्ट करने जा रहा है, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें देरी हो सकती है। वहीं चेतावनी और धमकियां केवल एक तरफा ही नहीं है। पिछले सप्ताह उत्तर कोरिया ने कहा था कि अमेरिका परमाणु हथियारों को लेकर अगर एक तरफा दबाव बनाता है तो वो बातचीत रद्द भी कर सकता है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी देश और अमरीका की ओर से जारी संयुक्त सैन्य अभ्यास से नाराज होकर ये फैसला लिया था।
और अभी अभी खबर आई है कि उत्तर कोरिया इस बात को लेकर राजी हो गया है कि जब वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट को नष्ट करेगा तो साउथ कोरिया के पत्रकार उसे देखने के लिए उत्तर कोरिया आ सकते हैं। और अब बात कर्नाटक की। आज जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमार स्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कांग्रेस ने डॉक्टर जी परमेश्वरा को उप मुख्यमंत्री नामित किया है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक के विपक्षी दलों के प्रमुख नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन वाली जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार को 24 मई को विश्वास मत साबित करना होगा। कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन वाली ये सरकार कर्नाटक की तीसरी गठबंधन सरकार है। क्या है तैयारियां, सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आखिरकार जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस गठबंधन ने साझा सरकार बनाने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं। पहला ये कि जनता दल सेक्युलर या जेडीएस ने कांग्रेस की उस मांग को मान लिया कि एक उपमुख्यमंत्री का पद हो सकता है। कांग्रेस ने राज्य के अध्यक्ष और दलित नेता डॉ जी परमेश्वरा को उपमुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया है। इसका मतलब ये कि दूसरा उपमुख्यमंत्री का पद जो कांग्रेस मांग रही थी वो नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस दूसरा उपमुख्यमंत्री का पद लिंगायत समुदाय के 18 विधायकों को खुश रखने के लिए मांग रही थी। मंत्रालयों के बंटवारे की जानकारी देते हुए कांग्रेस के महासचिव और कर्नाटका के प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने कहा,
एक्चुअली द कांग्रेस एंड जेडीएस लीडर्स मेट टुगेदर।
कांग्रेस और जेडीएस के नेता की बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया कि 34 मंत्रालयों में से 22 कांग्रेस के पास हो गए और 12 जेडीएस के पास, और इसमें मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है। विधानसभा के सभापति का पोस्ट कांग्रेस का होगा और उपसभापति जेडीएस के होंगे। मंत्री और मंत्रालयों के सवाल विश्वास मत के बाद ही लिया जाएगा। अगले एक दो दिन में समन्वय समिति भी घोषित की जाएगी। ये थे केसी वेणुगोपाल के शब्द। कांग्रेस की तरफ से विधानसभा के सभापति का पद रमेश कुमार संभालेंगे। रमेश कुमार 1994 में जनता दल के एचडी देवेगौड़ा के मुख्यमंत्री बनने पर पहली बार सभापति बने थे। मुख्यमंत्री निर्देश एचडी कुमार स्वामी ने कहा, विधानसभा के सभापति और उपसभापति का चुनाव विश्वास मत के फौरन बाद 24 मई को होगा और हम ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये एक गठबंधन सरकार है तो किसानों के खर्च का मामला हम 24 घंटों में नहीं ले पाएंगे। हम इस पर चर्चा करने के बाद ही निर्णय लेंगे। ये थे एचडी कुमार स्वामी के शब्द। लेकिन ये शपथ ग्रहण का मौका बीजेपी विरोधी पक्षों के लिए एक मंच में बदल गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा देश के 4 मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण में भाग लेंगे। वो हैं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, केरला के पिनाराई विजयन और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शपथ ग्रहण में भाग नहीं लेंगे, हालांकि वो कल शाम को ही देवेगौड़ा और कुमारस्वामी से बेंगलुरु में मिलकर देर रात हैदराबाद वापस पहुंच गए। इनके अलावा बीएसपी नेता मायावती, एसपी नेता अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह और तमिलनाडु के कमला हसन भी मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण विधानसभा के कदम पर होगा, जहां पहली बार जनता पार्टी के रामकृष्ण हेगड़े की सरकार ने शपथ ली थी, जिसमें देवेगौड़ा दूसरी बार मंत्री बने थे। उस जमाने में विपक्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट हो रहा था, आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहा है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने कहा है कि रमजान के दौरान सुरक्षा बलों के चरमपंथियों के खिलाफ अभियान न चलाने के फैसले का सकारात्मक असर दिखा है। उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया और फिर बीबीसी से बातचीत में भी कहा कि आम लोगों का भरोसा जीतने की दिशा में ये सीज फायर अब तक कामयाब रहा है। मगर आम कश्मीरी इस सीज फायर को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या उन्हें भी लगता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं? इसी पर सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
6 दिन पहले भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में रमजान के महीने के लिए नियमाबद्ध सीज फायर की घोषणा एक ऐसे समय में की गई जब कश्मीर के हालात बीते 3 वर्षों से अशांत रहे हैं। भारत सरकार की सीज फायर घोषणा के बाद चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा ने भारत सरकार की इस घोषणा को रद्द किया है और साथ ही अलगाववादियों ने भी सीज फायर घोषणा को एक मजाक बताया है। सीज फायर की इस घोषणा के 6 दिनों बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि सीज फायर घोषणा के बाद कश्मीर के हालात में बेहतरी आई है। पुलिस का यह भी कहना है कि रमजान के बाद 20 सीज फायर को जारी रखा जाना चाहिए। बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने इस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी वैद से बात की।
यूनिलैटरल सीज फायर अनाउंस हुआ 16 तारीख को, उसमें देखने में आया है कि उसका एक हवा में अच्छी उसकी इफेक्ट रहा है। कश्मीर वैली में लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से हालात बेहतर होते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद आए थे कश्मीर में, उनका दौरा था जो बिना किसी इंसिडेंट के गुजरा और 21 तारीख को वो भी एक इम्पोर्टेंट डे था जब मीरवाइज जो उनके फादर थे उनकी एनिवर्सरी थी, वो भी बिना किसी पेल्टिंग और किसी इंसिडेंट के हुआ। तो अभी तक वैली में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म देखते हैं कि बाकी आगे दिन कैसे रहते हैं।
हालांकि कश्मीर में आम लोगों की सीज फायर घोषणा पर अलग अलग राय है। श्रीनगर के रहने वाले शाहनवाज रसूल कहते हैं कि भारत ने जिस सीज फायर की घोषणा की है वो एक तरफा है, जबकि सीज फायर दोनों तरफ से होना चाहिए।
यूनिलैटरल सीज फायर का कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। बायलैटरल कोई भी काम हो, बायलैटरल होता है तभी जाके उसी कोई वैल्यू होती है। आज की डेट में अगर गवर्नमेंट ने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, अगर दूसरी पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है तो इसका क्या फन है? और वंस अगर उसमें कोई ऐसा कोई इशू आ जाता है, कहीं पे कोई अटैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इसका मतलब रिटेलिएट तो उस टाइम गवर्नमेंट करेगी। और रमजान के बाद भी अगर कोई प्लान है गवर्नमेंट को एक्सटेंड करने का, इट शुड बी बायलैटरल।
श्रीनगर के एक दूसरे नौजवान सुहेब वानी कहते हैं कि सीज फायर घोषणा से कश्मीर में रोज रोज होने वाले एनकाउंटर्स में जरूर एक कमी आई है। वानी ये भी कहते हैं कि रमजान महीने के बाद भी सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कश्मीर में हर दिन होने वाली मौतों में कमी आ सके।
बहुत जगह पे जहाँ पे एनकाउंटर्स हो रहे थे तो वो होना बंद हो गया, उससे जो हमारे सिविलियंस है, हमारे अपने भाई लोग हैं, तो बहुत सारी किलिंग्स कम हो गई। तो अगर हम सीज फायर की बात करें, ये कंटिन्यू हो जाए तो हालात में बहुत सुधार आ सकता है, और हम एज ए कश्मीरी हम चाहते भी है कि हालात में सुधार आ जाए और ये कंटिन्यू हो जाए।
भारत सरकार की तरफ से सीज फायर घोषणा से पहले राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में आयोजित सरदलिया बैठक के दौरान इस बात को बताया था कि सरदलिया बैठक में सभी दलों ने इस बात पर सहमति जताई है कि भारत सरकार रमजान महीने के लिए कश्मीर में सीज फायर की घोषणा करे। भारत सरकार की सीज फायर घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और विपक्ष एनसी ने सीज फायर घोषणा का स्वागत किया है। वर्ष 2000 में भी उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रमजान के महीने में चरमपंथियों के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन न करने की घोषणा की थी। कश्मीर में बीते 1.5 साल में 200 से भी ज्यादा चरमपंथी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद के अधिकारियों को केंद्रीय सेवाओं में तैनात करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने पीएमओ की ओर से भेजी गई एक चिट्ठी के आधार पर यह दावा किया। क्या लिखा है इस चिट्ठी में, राहुल के दावे में कितना दम है और बीजेपी का क्या कहना है, इसी पर बीबीसी संवाददाता अनंत प्रकाश की रिपोर्ट सुनिए अजीत सारथी से।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद के अधिकारियों को केंद्रीय सेवाओं में तैनात करने की योजना बना रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को लिखा गया एक पत्र भी ट्वीट किया। इस पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय चाहता है कि सिविल सर्विस एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवारों की सर्विस और काडर कार्यालय आवंटन में फाउंडेशन कोर्स के प्रदर्शन को भी आधार बनाया जाए। इस बारे में कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि यह प्रस्ताव बेहद खतरनाक है।
आमतौर पे बहुत ही जो टॉप के लोग होते हैं 2-3% को, उनको अपना होम स्टेट या जहां वो चाहते हैं चॉइस का कैडर मिलता है, बाकी लोगों को एक ट्रांसपेरेंट वे में मार्क्स के हिसाब से उनको किया जा रहा है। तो जो इनको कमिट करेंगे, आरएसएस की आइडियोलॉजी को कमिट करेंगे, इनके लॉयल होने को कमिट करेंगे, उन्हीं को ये चॉइस कैडर देंगे और बाकी लोगों को नहीं देंगे, ये उस तरह का शक है। और जो मोदी जी की नियत है, और चूंकि ये सीधे पीएमओ से आया है, तो इसमें ये मोदी जी का एक है कि ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की तरफ बढ़ने की कोशिश है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोली ने राहुल गांधी के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी भ्रम में है क्योंकि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है।
राहुल गांधी जी को बधाई भी देना चाहिए, विश्व के सबसे कंफ्यूज्ड व्यक्तियों में से शायद वो एक है। मुझे आरएसएस शब्द कहीं दिखा नहीं, आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। सिविल सर्विस का एग्जाम यूपीएससी करती है, आरएसएस नहीं करती है। यूपीएससी इस पर क्या करेगा, सुझाव पे सोच के यूपीएससी को लगता है कि अमल करना है नहीं करना है। यूपीएससी अपने आप में एक संस्था है, यूपीएससी का अधिकार है उसको देखना, उस पर मान लेना कि ये ऐसा है और ऐसा होगा, ये उन्हीं लोगों से हो सकता है जो काल्पनिक दुनिया में रहते हैं।
लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य पुरुषोत्तम अग्रवाल इस प्रस्ताव को समझाते हुए कहते हैं कि पहली बात ये है कि ये प्रस्ताव विभिन्न मंत्रालयों और काडर का नियंत्रण करने वाली संस्थाओं की राय जानने के लिए भेजा गया है, मगर इसे वापस लिया जाना चाहिए।
देखिए, एक तो यह है कि जो प्रस्ताव आया है, एक बात हम लोग साफ रखें कि पीएमओ ने उसे एक तरह की एक्सप्लोरेटरी नेचर का प्रस्ताव है, वो विभिन्न मंत्रालयों को, काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज को राय मांगने के लिए भेजा गया है। और उसमें उसका मतलब यह है कि अभी जो काडर एलोकेशन होता है यूपीएससी की परीक्षाओं के बाद सर्विसेज का, कि आप किस काडर में जाएंगे, वो जो आपकी यूपीएससी की परीक्षा में मेरिट बनती है उस पर आधारित होता है। ये प्रस्ताव ये कह रहा है कि जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें जो नंबर आप लाते हैं और उसमें जो मेरिट होती है वो भी इस काडर एलोकेशन में कंसिडर की जानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि ये उचित प्रस्ताव नहीं है और इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, बल्कि इसे वापस ले लेना चाहिए। काडर एलोकेशन में जो अभी की व्यवस्था है यूपीएससी की मेरिट लिस्ट, मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली उसी के अनुसार चलना चाहिए।
राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध देखा जा रहा है। जहां कांग्रेस इस मामले में हमलावर हो गई है, वहीं बीजेपी का कहना है कि बिना वजह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है।
देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल 76.91 रुपये और डीजल 68.21 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में जारी गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में देश के भीतर अलग अलग राज्यों में लगाए जाने वाले टैक्स की भी बड़ी भूमिका होती है। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने बात की अर्थशास्त्री और भाजपा नेता नरेंद्र तनेजा से।
देखिए इसकी दो चीजें हैं, एक तो यह है कि इसकी खाली वजह रुपया नहीं है कि रुपया थोड़ा कमजोर हुआ है, रुपये में थोड़ी सी कमजोरी डॉलर के अगेंस्ट जो आई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हुआ है, दूसरी तरफ जो है जो टैक्सेस लगते हैं पेट्रोल और डीजल पे, अगर उनको औसत निकाल के देखें तो लगभग जितना तेल की कीमत होती है, पेट्रोल की कीमत होती है, उस पर लगभग उतना ही टैक्स होता है, लगभग 100%।
हमारे श्रोताओं को उन टैक्सेस के बारे में बताएंगे कि केंद्र सरकार कितना टैक्स लगाती है, राज्य सरकार कितना टैक्स लगाती है और कितने तरह के टैक्स होते हैं।
सबसे पहले कच्चा तेल खरीदा जाता है, उसके बाद रिफाइनरी में लेके आया जाता है, और जो रिफाइनरी का गेट से जब तेल निकलता है पेट्रोल और डीजल की शक्ल में, उसके बाद उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाते हैं। तो पहला सबसे बड़ा जो टैक्स लगता है वो केंद्र सरकार का लगता है, जिसको एक्साइज बोलते हैं। अब वो एक्साइज का निकलने के बाद वो किस राज्य में वो ट्रक जा रहा है तेल लेकर के, वो राज्य उस पर अपना अलग से टैक्स लगाती है, कहीं उसे सेल टैक्स बोला जाता है, कहीं पे उसको वेट बोला जाता है। अगर आप दोनों टैक्सेस को मिला लें केंद्र और राज्य के, तो वो लगभग जितना जो पेट्रोल या डीजल की कीमत होती है उस पर उतना ही टैक्स लग जाता है। अर्थात अगर मान लिया पेट्रोल डीजल जो है वो 35 रुपए का या 40 रुपए प्रति लीटर है, तो उस पर लगभग उतना ही टैक्स लगता है, जो 100% हो जाता है। और उसके बाद जो है जो पेट्रोल पंप है उसकी डीलरशिप को अपनी प्रॉफिट मिलता है, मार्जिन मिलता है, उसकी कमीशन होती है, वो अपना वो चार्ज करता है। तो जब तक आप पेट्रोल एक पंप से खरीदते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, उसके ऊपर जो है आप लगभग जो पैसा दे रहे होते हैं, 100% पैसा जो है वो सरकार के पास चला जाता है। उसका लगभग आधा पैसा, आधे से थोड़ा कम 47% करीब केंद्र सरकार को जाता है, और लगभग 53% के करीब वो राज्य सरकारों को जाता है। वो राज्य में अलग अलग टैक्सेस हैं, कहीं ज्यादा हैं कम हैं, तो ये प्रतिशत जो है ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मोटा मोटा आधा केंद्र को आधा राज्य सरकारों को। तो और जो राज्य सरकारें जो टैक्स लगाती है वो एड वेलरम लगाती है, अर्थात जो टैक्स है उनका प्रतिशत फिक्स है, अगर कीमत बढ़ती है तो उसी हिसाब से राज्य सरकार का जो टैक्स है वो बढ़ जाता है, जो एक्साइज लगता है वो फिक्स्ड होता है।
अर्थशास्त्री नरेंद्र तनेजा बता रहे थे कि तेल की कीमतें आखिर बढ़ती कैसे हैं। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। मोहम्मद शाहिद काफी देर से अखबारों को उलट पलट रहे हैं, क्या कहते हैं आज के अखबार शाहिद?
आदर्श जी, यहीं से शुरुआत करते हैं तेलों की कीमतों से ही। जिस तरीके के आप देख ही रहे हैं कि तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अखबारों ने उम्मीद जताई है कि अगले 2-3 दिन में तेल के दाम कम हो सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अगले कुछ दिनों में तेल पर जो दाम है वो 2 से 4 रुपए तक घट सकते हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है कि तेल की चढ़ती कीमतों पर आज राहत की उम्मीद।
ये इसकी कुछ वजह भी बताई है इन्होंने?
इन्होंने कहा है कि भाई केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है कि इतना वो बढ़ रहा है, और
एक्साइज टैक्स,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक भी इस पर हो सकती है, वो चाह रहे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है कि 9 दिन में पेट्रोल 2.24 पैसा, डीजल 2.15 रुपए महंगा हुआ है, 15 पैसा महंगा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि IOC का जो तिमाही मुनाफा है, जो तेल देती है कंपनी, उसका 40% बढ़ा है, और पेट्रोल 2 साल में 20 रुपए महंगा हुआ है। ये गौर करने वाली बात है। इसके अलावा आते हैं आदर्श, आज के अधिकतर अखबारों में तमिलनाडु में जो पुलिस फायरिंग हुई उसमें कई लोगों के मारे जाने की जो खबर है वो हर किसी अखबार के लगभग पहले पन्ने पर है। इसके अलावा कर्नाटक में जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है आज, उसकी हर जगह खबर है। आते हैं पहले इस पे, इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि तमिलनाडु में वेदांता विरोधी प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में कम से कम 9 लोगों की मौत। नवभारत टाइम्स लिखता है प्लांट के विरोध में आई भीड़, पुलिस फायरिंग में 9 की मौत। दैनिक भास्कर लिखता है कि तमिलनाडु में कॉपर प्लांट का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस की फायरिंग, 9 की मौत और 60 घायल। तो ये खबर है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं आदर्श। आप हवाई यात्रा तो करते होंगे?
जी
बिल्कुल। और हवाई यात्रा के दौरान टिकट कैंसिलेशन का जो एक मामला होता है वो बड़ा पेचीदा होता है, उसमें रकम जो है आपकी बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो एक केंद्र सरकार ने एक मसौदा भी तैयार किया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, कि अगर आप 96 घंटे के अंदर हवाई टिकट कैंसिल कराते हैं, रद्द कराते हैं, तो उसकी जो कैंसिलेशन चार्ज है वो बेसिक फेयर से ज़्यादा नहीं होगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद। देश के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के कारण प्रदेश के 5 जिलों में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पश्चिम त्रिपुरा ज़िले में हुआ है। बाढ़ में बेघर हुए हजारों लोग फिलहाल राहत शिविरों में रहने चले आए हैं। इसी पर सुनिए असम से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
त्रिपुरा में पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बारिश के चलते आई बाढ़ ने राज्य के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। त्रिपुरा आपदा प्रबंधन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम त्रिपुरा जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए गए हैं। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 13,000 से अधिक बेघर हुए लोगों को रखा गया है। असम अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। इसके अलावा कई स्थानों पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस बीच नदी के किनारे प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। इन शिविरों में प्रशासन ने पर्याप्त खाने और पेयजल की व्यवस्था की है, जबकि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने पीड़ितों के परिवार के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। दरअसल लगातार भारी बारिश होने के कारण प्रदेश में बहने वाली तीनों प्रमुख नदियां सोमवार तक अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, जिसमें अब मामूली सुधार की बात कही जा रही है। त्रिपुरा आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी शरद कुमार दास ने बीबीसी से कहा,
अभी है हमारा जो गोमती है सबसे बड़ा रिवर है और सेकंड है हावड़ा, थर्ड है हमारा कटाखल। तीनों का रिवर का जो लेवल है अभी डेंजर लेवल से कम है।
राजधानी अगरतला के कई इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अगरतला नगर निगम के कई वार्डों में अब भी लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। NDRF, अग्नि सेवाएं, सुरक्षा बलों के जवान और स्वयंसेवक संयुक्त रूप से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। अगरतला शहर में बाढ़ के इस मंजर को देखने वाली स्थानीय पत्रकार जैस्मीन देव जमातिया कहती है,
ज्यादा नुकसान हुआ हावड़ा नदी किनारे जितने भी गांव घर थे बहुत ज्यादा परिमाण में नुकसान हुआ है। भारी बारिश की वजह से हावड़ा नदी का पानी डेंजर लाइन से ऊपर चढ़ के घरों घरों में बह के आने लगा। कमर तक पानी अब भी है। करीब 700 परिवारों को घर छोड़ना पड़ा, घर छोड़ के उन्हें राहत शिविर में जाना पड़ा।
राज्य में अभी मानसून ने ठीक से दस्तक ही नहीं दी है और बारिश ने यहाँ के लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। राहत की बात बस इतनी है कि लगातार हो रही बारिश में मामूली कमी आई है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC, गुवाहाटी।
और अब समय है खेल समाचारों का। IPL में कल खेले गए पहले क्वालिफायर मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अपडेट्स दे रही हैं सूर्यांशी पांडे।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं IPL की चकाचौंध में, जहां पर आज एलिमिनेटर राउंड मुकाबला होना है। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होना है। आपको बता दें IPL में प्लेऑफ के मुकाबले शुरू हो चुके हैं, जिसमें पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ था और आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एलिमिनेटर राउंड का मुकाबला होना है। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाना है। आपको बता दें ये मुकाबला आज शाम 7 बजे से शुरू होगा और इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी उसको क्वालिफायर 2 के मुकाबले में खेलने का मौका मिलेगा। और अब अगर आपको बैडमिंटन के कोर्ट पर लेकर जाया जाए तो वहां पर थाईलैंड के शहर बैंकॉक में थॉमस एंड उबर कप खेला जा रहा है। इस मुकाबले में आज आखिरी ग्रुप मैचेस हैं, जिसके बाद कल से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम की मेजबानी कर रही हैं साइना नेहवाल। तो वहीं रूस में फुटबॉल के मैदान पर हलचल दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि फुटबॉल के विश्व कप की तैयारी जोरों पर है। तो वहीं विश्व की सभी टीमों की घोषणा भी होनी शुरू हो गई है, जिसमें इंग्लैंड की टीम की अगर बात करें तो स्ट्राइकर हैरी केन को इंग्लैंड की टीम का कप्तान बनाया गया है। इंग्लैंड के मैनेजर गैरेथ साउथगेट ने हैरी केन को कप्तान बनाने की घोषणा की थी। आपको बता दें रूस में फीफा वर्ल्ड कप 14 जून से शुरू होगा, जिसमें 18 जून को इंग्लैंड का मुकाबला होगा टूनिशिया के साथ। ये मुकाबला इंग्लैंड के लिए ओपनिंग ग्रुप मैच होगा।
और विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर मोहम्मद शाहिद से।
BBC समाचार। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षण स्थल को नष्ट करते समय इसको देखने के लिए दक्षिण कोरिया के पत्रकारों को अपने यहां आने की अनुमति दे दी है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा है कि उत्तर कोरिया अगर कुछ शर्तों को पूरा करने से इनकार करता है तो शिखर सम्मेलन में देरी हो सकती है। JDS नेता HD कुमारस्वामी आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं गठबंधन सरकार के सबसे बड़े दल कांग्रेस के दलित नेता और प्रदेश प्रमुख जी परमेश्वरा उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस नेता KR रमेश स्पीकर पद की शपथ लेंगे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया अभिमन्यु साहा ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।